तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन तेरे संसार में।
क्या कहना पाया बाबा तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन तेरे संसार में।
क्या कहना पाया बाबा तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन तेरे संसार में।
शांति ब्राह्मण जीवन के दो मूलभूत सिद्धांत, एक है त्याग और दूसरा है भाग्य। ये दो ऐसे पहलू हैं, ऐसे सिद्धांत हैं जो दोनों आपस में बहुत, इनका आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। त्याग अर्थात जो हमने जीवन में छोड़ा हुआ है, और भाग्य अर्थात जो हमें इस जीवन में प्राप्तियां हुई हैं। यदि जीवन में त्याग उच्च कोटि का है तो प्राप्तियां भी सर्वोत्तम क्वालिटी की होंगी। त्याग साधारण है तो प्राप्तियां भी साधारण होंगी। दूसरी बात, यदि प्राप्तियां श्रेष्ठ हुई हैं तो जो जीवन में निकृष्ट चीजें हैं उनका सहज ही त्याग हो जाता है। तो त्याग और भाग दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, एक दो पर निर्भर हैं। इस जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें थी, या पास्ट की लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो जीवन को परेशान की हुई थी, जिनसे जीवन में समस्याएं पैदा हो रही थी, जो जीवन में संघर्ष का कारण बनी हुई थी, और उनसे हम परेशान थे लेकिन उसे हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन भगवान ने आकर के हमें ऐसी ऐसी श्रेष्ठ प्राप्तियां कराई हैं जिन प्राप्तियों के कारण वो चीजें हमारे जीवन से सहज ही निकल गई हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ में चाकू है और उससे वो खेल रहा है। यदि उसको उस चाकू से मुक्त करना है, उसके हाथ से वो चाकू लेना है, छुड़ाना है, तो उसके दो तरीके हैं। एक है उससे वो छीन लेना जबरदस्ती, और दूसरा है उसके बदले जो उसकी पसंदी है, जो वो चाहता है, वो उसको चीज, कोई खाने की वस्तु है या कोई खेलने की वस्तु है, वो उसको दे देना। जो पहली विधि है कि उससे छीन लेना, जबरदस्ती उससे चाकू ले लेना, यह डेंजर है। क्योंकि यदि उससे हम वो चीज लेने की कोशिश करेंगे, छीनने की कोशिश करेंगे, तो वो उसको और भी मजबूती से पकड़ेगा और उससे उसको हानि हो सकती है। दूसरी जो विधि है कि उसके पसंद की उसकी चीज को, उसको वो चीज दे देना, तो उस चाकू को वो स्वतः ही छोड़ देगा। तो बाबा आकर के संसार में हम सभी के ऊपर जो दूसरा मेथड है, दूसरी विधि है, उसको अप्लाई करते हैं। क्योंकि हम जीवन में बहुत सारी चीजों को पकड़े हुए थे जो हमारे लिए नुकसानकारक थी, हानिकारक थी, लेकिन उनको हम छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनको हमने स्वयं ही स्वीकार किया हुआ था कि ये हमारे लिए आवश्यक है, ये हमारे लिए जरूरी है। लेकिन उसका जो नुकसान था, उस नुकसान को उठाने के बाद भी हम उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। तो भगवान ने आकर के हमें ऐसी ऐसी श्रेष्ठ प्राप्तियां, श्रेष्ठ उपलब्धियां कराई हैं, जिनके फल स्वरूप, जिनके परिणाम स्वरूप हम उन चीजों को सहज ही छोड़ देते हैं। इस ब्राह्मण संसार की आत्माओं को जो दुनिया के लोग देखते हैं, इस ब्राह्मण जीवन के त्याग को देखते हैं, तो उनको वंडर लगता है कि आप लोगों ने इतना बड़ा त्याग कैसे कर दिया। संसार का जो खान पान था उसको आपने छोड़ा, जो संसार का जो फैशन था उसको आपने छोड़ा, एक सिंपल जीवन जी रहे। संसार की जो बहुत सारी इच्छाएं थी, उन इच्छाओं को आपने छोड़ दिया, तो ऐसा क्यों, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो उन आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं का त्याग जो है वो दिखाई देता है। लेकिन इन ब्राह्मण आत्माओं को प्राप्तियां क्या क्या हुई हैं, उन्होंने क्या क्या पाया, उनको उसका एहसास नहीं होता है। तो हम इस ब्राह्मण जीवन में देखेंगे कि हमने इस ब्राह्मण जीवन में क्या क्या छोड़ा और क्या क्या पाया। क्योंकि इस पुरुषार्थी जीवन में चलते चलते जो हमारे पुरुषार्थ में रुकावट का एक बहुत बड़ा कारण है, वो कारण ये है कि हमें इस चीज की विस्मृति है कि हमने इस ब्राह्मण जीवन में क्या क्या छोड़ा और क्या क्या पाया। क्योंकि जब तक हमें इस चीज की स्मृति नहीं होगी, स्मृति इमज रूप में नहीं होगी, तब तक हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति से नहीं चलेगा। तो इन दोनों बातों को हमें अपनी स्मृति में इमज रूप में रखने की जरूरत है कि हमने भगवान का बनने के बाद क्या क्या छोड़ा हुआ है और भगवान के बनने के बाद हमको क्या क्या मिला, अर्थात हमने क्या क्या पाया हुआ है। तो उसमें पहली बात है कि हमने बाबा का बनने के बाद लौकिक को छोड़ा और अलौकिक को पाया। भगवान के बनने के बाद हम लौकिक में फंसे हुए थे, लौकिक संबंध है, लौकिक परिवार है, और लौकिक की बहुत सारी बातें हैं, उन बातों में हम चल रहे थे, उनको जीवन में अप्लाई किए हुए थे। लेकिन भगवान के बनने के बाद हमने उस लौकिक को छोड़ा और हमने इस अलौकिक को स्वीकार किया, अलौकिक को पाया, और इस अलौकिक जीवन में हमको बहुत सारी प्राप्तियां हुई हैं। जैसे कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार मिला, ये ऐसा श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार है जिसमें हर एक आत्मा महान आत्मा है। बाबा कहते हैं मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो जो हमने लौकिक का त्याग किया उसके बदले हमको क्या मिला? अलौकिक परिवार, एक श्रेष्ठ परिवार मिला। और ये श्रेष्ठ परिवार इतना महान है, इतना श्रेष्ठ है कि इसकी एक एक आत्मा राजा है, राज्य अधिकारी है। तो लौकिक का त्याग किया और अलौकिक को पाया। दूसरा है हद का त्याग किया, बेहद को पाया। हद के संसार में हम दुनिया में थे तो हम हद में फंसे हुए थे। एक छोटा सा परिवार था, माँ बाप भाई बहने या और परिवार के कुछ मेंबर्स, उनमें हमारी बुद्धि फंसी हुई थी, अटकी हुई थी, हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन भगवान के बनने के बाद हम उस हद से निकल करके बेहद में आ गए। दुनिया में एक कहावत है, कूप मंडूक, एक मेढक की कहावत है कि एक मेढक एक कुएं में है और वह उस कुएं को ही सारा सागर समझ रहा है कि यही एक सागर है, यही सागर है। तो हम भी क्या करते थे, उस छोटे से परिवार को सारा संसार मान बैठे हुए थे, उस हद में अटके हुए थे। बाबा ने कहा कि आप तो सारे विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो, सारा संसार आप पर निर्भर है, सारे संसार के आप आधार मूर्त हो। तो बाबा हमें बेहद में ले आए। तो हद से निकल करके हम बेहद में आ गए। तीसरी बात है, हमने माया को छोड़ा और राम को पाया। वर्तमान समय सारा संसार माया के चक्कर में फंसा हुआ है। संसार में लोग माया में ही सारा सुख खोज रहे हैं, लेकिन माया ने उनको क्या किया हुआ है, उनको, उनके दिल को दुखी किया हुआ है, उनके दिल में परेशानियां पैदा की हुई है, उनका आराम हराम कर दिया। लेकिन हम ब्राह्मण जीवन में क्या करते हैं, उस माया को छोड़ करके हम भगवान के बनते हैं, राम के बनते हैं। और राम के बनने से हमको, हमारे दिल को आराम मिला है, राहत मिली है, दिल को सुकून मिला है, जो दिल की चाहना थी, खुशी, रूहानी मौज, अतिंद्रिय सुख, वो सब प्राप्तियां हुई हैं। तो माया को छोड़ा और प्रभु को पाया, राम को पाया। अगली पॉइंट है, मनमत और परमत को छोड़ा और श्रीमत को पाया। मनमत और परमत ये दोनों ही माया से प्रभावित हैं। मनुष्य या मनुष्य का मन दोनों ही माया से प्रभावित हैं। तो मनुष्य से जो भी, चाहे स्वयं के मन की मत है या फिर अन्य किसी व्यक्ति की मत है, वो माया से प्रभावित होने के कारण वो जो भी मत देते हैं उससे जीवन में गिरावट ही आती है, उससे समस्याओं का हल नहीं मिलता है और समस्याएं जटिल होती जाती हैं। लेकिन भगवान के बनने के बाद बाबा ने हमें श्रीमत दी है। तो जहां श्रीमत है वहां पर स्वयं भगवान साथ है, और जहां भगवान साथ है वहां पर हर कदम में सफलता है, हर कार्य में सफलता है। तो हमने मनमत और परमत को छोड़ा, श्रीमत को पाया। अगले पॉइंट है, परचिंतन प्रदर्शन को छोड़ा और स्वचिंतन स्वदर्शन को पाया। जो कहावत है परचिंतन प्रदर्शन, ये पतन की क्या है, पतन की जड़ है, और स्वचिंतन स्वदर्शन उन्नति की सीढ़ी है। तो इस ब्राह्मण जीवन से पहले हम परचिंतन प्रदर्शन में थे, दूसरों को देखने में, दूसरों के बारे में सोचने में। तो इससे क्या हुआ कि हम कहां से कहां पहुंच गए, कहां टॉप पॉइंट पर थे और कहां अभी हम रसातल में पहुंचे हुए हैं। क्योंकि जिनके बारे में हम सोच रहे हैं उनकी हम नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं, उनकी हम खामियों को देख रहे हैं, उनकी बुराइयों को देख रहे हैं। संसार में हर एक आत्मा में कुछ खामियां हैं, कुछ विशेषताएं भी हैं, लेकिन हमने कौन सा चश्मा पहना हुआ था, बुराइयों को देखने के, हर एक में कमी कमजोरियों को देखने का, खामियों को देखने का। तो उससे नुकसान किसका हुआ, हमारा स्वयं का, हम स्वयं हमारा स्वयं का पतन हुआ है, हम गिरावट में आए, गिरती कला में पहुंचे हुए हैं। अभी बाबा ने हमें क्या सिखाया हुआ है, स्वचिंतन करो, स्वदर्शन करो, तो इससे हमारी चढ़ती कला होती है। क्योंकि स्वदर्शन करने से जो आत्मा के गुण हैं, जो आत्मा की शक्तियां हैं, जो हमारी विशेषताएं हैं, वो इमर्ज होती हैं। और जहां हमारी स्वयं की विशेषताएं, स्वयं की शक्तियां, स्वयं के गुण इमर्ज होंगे, तो उनसे हमारे संकल्प श्रेष्ठ होते हैं, भावनाएं श्रेष्ठ बनेंगी, कर्म श्रेष्ठ होते हैं, संबंध संपर्क अच्छे होते हैं। दूसरी बात, स्वचिंतन करने से बल मिलता है, पर चिंतन करने से जो आत्मा की शक्ति है, एनर्जी है, वो नष्ट होती है। स्वचिंतन करने से हमारी शक्ति बढ़ती है। तो आपने परचिंतन और प्रदर्शन को छोड़ा और स्वचिंतन और स्वदर्शन को पाया। इसके साथ साथ बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हुई हैं, जैसे कि देहभान को छोड़ा, देही स्वरूप को पाया। देहभान जो सभी समस्याओं की जड़ है, सभी बुराइयों की जड़ है, सभी कारणों की जो जड़ है, हमने उसका त्याग किया और देही स्वरूप जो हमारा ओरिजिनल अनादि अविनाशी स्वरूप है, उस स्वरूप को हमने पाया। तो उससे क्या फायदा हुआ कि हमारे स्वयं की विशेषताएं, स्वयं के गुण हमारे जीवन में आने लगे, और जो जीवन में जो खामियां थी, जो नेगेटिविटी थी, वो हमारे जीवन से आस्ते आस्ते निकलती गई है। तो हमने देह के स्वरूप को छोड़ा और देही स्वरूप को पाया। इसके साथ साथ अगली पॉइंट है, बहुत सारी पॉइंट है, पुराने तमो प्रधान ड्रेस को छोड़ा और लाइट की ड्रेस को पाया। पुराने तमो प्रधान ड्रेस जो बाबा कहते हैं दाग वाली ड्रेस थी, जिनमें खून के धब्बे थे, उस ड्रेस को हमने छोड़ा और क्या पाया, नई फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस जिसमें कोई भी दाग नहीं, ट्रांसपेरेंट ड्रेस। अगली पॉइंट है, पुराने जीवन शैली को छोड़ा, पुरानी दुनिया की पुराने जीवन शैली को छोड़ा और नई जीवन शैली को धारण किया। पुराने जीवन शैली में क्या था, सवेरे 8 बजे उठना और आपका 12 बजे सोना और फिर सारा दिन व्यर्थ की बातों में बिजी रहना, तो उसको हमने त्याग किया और नई जीवन शैली को हमने अपनाया। नई जीवन शैली में क्या क्या अपनाया, अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे उठना, उठ करके सबसे पहले पहले भगवान से मुलाकात करना, भगवान से रू रिहान करना। दुनिया में लोग कहते हैं कि सुबह सुबह जिसका मुख देखते हैं फिर सारा दिन वैसा ही बीतता है, यदि किसी के अच्छे का मुख देखते हैं तो सारा दिन अच्छा बीतता है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति का मुख देखते हैं जिसको अशुभ मानते हैं तो सारा दिन फिर वैसा ही जाता है। तो हम सुबह सुबह किसका मुख देखते हैं, भगवान का, इसलिए हमारा सारा दिन कैसा जाता है, खुशियों में, मौजों में। तो हमने जो पुरानी जीवन शैली थी उसको छोड़ा और नई जीवन शैली को अपनाया। हम लोग तो पहले अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, भगवान से बातें करते हैं, रूह रिहान करते हैं, भगवान की पढ़ाई पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, श्रेष्ठ विचारों का मंथन करते हैं, और रात को हम भगवान से गुड नाइट करके, बाबा कहते हैं आधा घंटा पहले योग करके फिर सोने का, जिससे आपका अमृत वेला श्रेष्ठ हो। तो हमने ऐसे नई जीवन शैली को अपनाया हुआ है। अगली पॉइंट है, कलयुग को छोड़ा और संगम युग को पाया। कलयुग जिसमें सारी समस्याएं समस्याएं, कलयुग समस्याओं का सागर है, जहां हर प्रकार की समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, उस कलयुग को हमने छोड़ा और संगम युग को पाया। तो कलयुग जो है वो मुझाने वाला है, उसमें मन मुझा हुआ था, और संगम युग है जो वो मौजों का युग है। तो संगम युग को पाया अर्थात हमने मौजों के युग को पाया। इस ब्राह्मण जीवन में मौज ही मौज है, صبح سے لے کے رات تک موجے ہی موجے ہیں، موجوں میں اٹھتے ہیں، موج سے پڑھائی پڑھتے ہیں، موج سے سیوا کرتے ہیں، اور موج سے بھگوان کے ساتھ گڈ نائٹ کر کے سو جاتے ہیں۔ تو برہمن جیون میں موج ہی موجے ہیں، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، موجیں ہی موجیں ہیں۔ اگلی پوائنٹ ہے، بابا کہتے ہیں بھکتی ہے چھاچھ اور گیان ہے مکھن۔ تو ہم نے بھکتی روپی چھاچھ کو چھوڑا اور گیان روپی مکھن کو پایا، کیونکہ بھکتی میں جو بھی پراپتیاں ہوتی ہیں وہ پراپتیاں الپکال کی ہوتی ہیں۔ ستسنگ میں جاتے ہیں، پربچن سنتے ہیں یا پوجا پاٹ کرتے ہیں تو اس میں الپکال کی خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ خوشی استھائی نہیں رہتی ہے۔ وہ خوشی کیول جہاں ہم رہتے ہیں مندر میں یا کہیں ستسنگ میں، وہاں تک ہی سیمت رہتی ہے۔ اور گیان سے ہمیں کیا ملا ہوا ہے؟ گیان مکھن ہے، مکھن کے سمان ہے۔ تو بابا نے کہا کہ آپ کو گیان کا مکھن ملا ہے، جس مکھن کو، جس گیان کو آپ منن چنتن کر اس کو ہضم کر لیتے ہو تو اس کی شکتی آپ کے جیون میں سدا کال رہتی ہے۔ تو ہم نے بھکتی روپی چھاچھ کو چھوڑا اور گیان روپی مکھن کو پایا۔ اگلا ہے، شوک واٹکا کو چھوڑا اور اشوک واٹکا کو پایا۔ شوک واٹکا، شوک ارتھات جہاں دکھ ہی دکھ ہے، جہاں ہر پرکار کا دکھ ہے، جہاں راون کی قید ہے، راون کی قید، جہاں بندھن ہے، جہاں دباؤ ہے، پریشر ہے، تو اس شوک واٹکا کو ہم نے چھوڑا اور اشوک واٹکا کو پایا۔ اشوک واٹکا میں سب کچھ، ہر پرکار کا سکھ ہی سکھ ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، موج ہی موج ہیں۔ اگلی پوائنٹ ہے، اسطیہ کو چھوڑا اور ستیہ کو پایا۔ بابا کہتے ہیں یہ جھوٹی کایا، جھوٹی مایا، جھوٹا سب سنسار ہے۔ یہ سنسار میں سب جگہ جھوٹ ہی جھوٹ ارتھات اسطیہ ہی اسطیہ ہے۔ تو ہم نے سنسار میں جو جھوٹ ہے، انیک پرکار کا جھوٹ ہے، اس کو چھوڑ کر کے ہم نے ستیہ کو پایا۔ ستیہ ارتھات ایک ستیہ پرماتما کو پایا، دوسرا جو ہمارا سوئم کا ستیہ سوروپ ہے آتما کا، اس کو پایا۔ اگلی پوائنٹ ہے، ابھیمان کو چھوڑا، شوامان کو پایا۔ سنسار میں لوگوں کو انیک پرکار کا ابھیمان رہتا ہے، اور جہاں ابھیمان ہوتا ہے وہاں پر، وہاں کیا ہوتا ہے؟ ابھیمانی ویکتی سے سب دوری بنا کر رکھتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، تو اس سے ابھیمانی ویکتی کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ اور جس کو شریشٹھ سمان ہے، جو شریشٹھ سمان میں رہتا ہے، اس کے سب سمیپ آنا چاہتے ہیں، کیونکہ شریشٹھ سمان میں رہنے والی آتما دوسروں کو مان دیتی ہے، دوسروں کو سمان دیتی ہے۔ تو ہم نے ابھیمان کو چھوڑا اور شوامان کو پایا۔ اگلا ہے، اہنکار کو چھوڑا اور انیک پرکار کے النکاروں کو پایا۔ بابا کہتے ہیں برہمن جیون میں آپ نے انیک پرکار کے النکاروں کو پایا، گیان کے النکار، گڑوں کے النکار، شکتیوں کے النکار۔ اگلی بات ہے، اگلی پوائنٹ ہے، آسری اوگنوں کو چھوڑا اور ایشوری گڑوں کو اور دیوی گڑوں کو پایا۔ اس برہمن جیون سے پہلے ہر ایک کے جیون میں آسری اوگن تھے، اور آسری اوگن وہ ایک خان کے روپ میں تھے۔ جیسے کوئی بھی خان ہوتی ہے تو خان میں اتھا وہ چیز ہوتی ہے، تو اسی پرکار سے ہر ایک کے جیون میں آسری اوگنوں کی خان تھی، اتھا آسری اوگن تھے۔ لیکن برہمن بننے کے بعد، بھگوان کے بننے کے بعد، ہم نے کیا پایا؟ ایشوری گن پائے، جو بھگوان کے گن ہیں ان گنوں کو پایا، ساتھ ساتھ جو دیوتاؤں کے گن ہیں، دیوی گن ہیں، ان گنوں کو پایا۔ تو ان کو ہمیں سمرتی میں رکھنی ہے۔ اگلی پوائنٹ ہے، انیکوں کو چھوڑا اور ایک کو پایا۔ دنیا میں کہاوت ہے، ایک ہی سادھ ہے سب سدھے، سب سادھے سب جائے۔ ہم انیکوں کو ہم نے پکڑا ہوا تھا، اور انیکوں کو جو پکڑا ہوا تھا اسے کیا ہوا؟ اس سے ہمارا پتہ نہیں ہوا، کسی سے کوئی پراپتیاں نہیں ہوئی ہیں، اور یہ ہمارے من کو انہوں نے بھٹکایا ہوا تھا، من کو بھرمت کیا ہوا تھا۔ अभी संगम युग पर हमने एक भगवान को पाया, एक भगवान को पाने से, एक भगवान को राजी करने से हमने सब कुछ पाया, क्योंकि एक में सब कुछ समाया हुआ है, एक में सारे संबंध समाये हुए हैं, एक में सारी प्राप्तियां समाई हुई हैं, एक में अनेकों का प्यार, अनेकों का साथ, अनेकों का सहयोग, जो एक है वो एक संसार के रूप में है। तो हमने अनेकों को छोड़ा और एक को पाया। अगली पॉइंट है, अल्पकाल के सहारों को छोड़ा और एक बेहद के सहारे को पाया। संसार में जिनको हमने अपना सहारा बनाया हुआ था, जिनको अपना हम सहारा समझते थे, जिनको अपना समझते थे, वो सभी सहारे कैसे थे? अल्पकाल के तिनके के समान, जो डुबोने वाले थे। और एक भगवान जो सारे विश्व का सहारा है, जो सारे विश्व की नैया को पार लगाने वाला है, उसको हमने अभी अपना बनाया हुआ है, उसको पाया हुआ है, जो डूबते हुए को भी किनारे लगाने वाला है। अगली पॉइंट है, अज्ञान अंधकार को छोड़ा और ज्ञान प्रकाश को पाया। पास्ट की लाइफ में हम सभी के जीवन में अज्ञानता का गहरा अंधकार था। अंधकार इतना गहरा था कि हम कहाँ हैं, हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है, हमें किसी भी बात के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, न स्वयं के बारे में, न स्वयं की विशेषताओं के बारे में, न स्वयं के गुणों के बारे में, न स्वयं का लक्ष्य और इस संसार में हमें करना क्या है, वो कोई ज्ञान नहीं था। बाबा के बनने के बाद हमें वो ज्ञान का प्रकाश मिला। अगले पॉइंट है, अनेक टाल टालियों को छोड़ा और एक बीज को पाया। संसार में जो भी, जैसे कि संसार में बहुत सारे गुरु गोसाई हैं, वो सभी क्या हैं? एक टाल टालियां हैं, जिनको हमने पकड़ा हुआ था, और उनको पकड़ने के कारण हम उन टाल टालियों में लटके हुए थे, अटके हुए थे। लेकिन संगम युग पर हमने एक भगवान, जो सर्व प्राप्तियों का बीज है, सर्व प्राप्तियों का सागर है, उसको हमने पाया, जिनसे मन भरपूर हो गया। अगली पॉइंट है, आसार को छोड़ा और सार को पाया। ये संसार क्या है? आसार है, इसमें कुछ रखा नहीं है, मृग तृष्णा के समान है। लगता है कि वहां कुछ है, किसी व्यक्ति से कुछ मिलेगा, कुछ साधन से कुछ मिलेगा, कुछ अनुभव होगा, वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन जिसको हमने अपना समझा, उससे हमें और ही धोखा मिला। तो ये संसार आसार संसार है, उसको हमने छोड़ा और सार को पकड़ा। अगले पॉइंट है, अधीनता को छोड़ा और अधिकार को पाया। इस ब्राह्मण जीवन से पहले हम अधीन थे। किसके अधीन थे? माया के अधीन थे, और अपने कर्म इंद्रियों के अधीन थे, विकारों के अधीन थे, मन बुद्धि संस्कार के अधीन थे। लेकिन भगवान के बनने के बाद हम अधिकारी बन गए। तो अधीनता को छोड़ा और अधिकार को पाया, क्योंकि अभी हम मालिक बन गए, इंद्रियों के मालिक बन गए, मन बुद्धि संस्कार के मालिक बन गए। इसके साथ साथ माया को भी हमने अधीन किया हुआ है। तो पहले अधीन थे, अभी हम अधिकारी बन गए। अधीनता को छोड़ा अर्थात अभी हम मालिक बन गए। अगली पॉइंट है, विष को छोड़ा और अमृत को पाया। बाबा कहते हैं जो विषय वासनाएं हैं वो विष के समान है, उनको हमने छोड़ा और ज्ञान अमृत को पाया, जो अमर बनाने वाला है। अगले पॉइंट है, व्यर्थ को छोड़ा और समर्थ को पाया। इस संसार में वर्तमान समय व्यर्थ ही व्यर्थ है, अनेक प्रकार का व्यर्थ है। जो अभी हमारी सीरीज चली थी व्यर्थ से मुक्ति की, तो संसार में अनेक प्रकार का व्यर्थ है, उस व्यर्थ को हमने छोड़ा और समर्थ को पाया। जहां व्यर्थ है वहां पर वीकनेस है, कमजोरियां हैं, और जहां समर्थ है वहां शक्ति है, वहां सफलता है। अगली पॉइंट है, बगुलों का संग छोड़ा और हंसों का संग पाया। संसार में हम जिन आत्माओं के संग में रहते थे, जो हमारे दोस्त थे या कोई भी थे, वो सभी कौन सी मंडली थी? बगुलों की मंडली थी। वो सभी जो व्यर्थ की बातें हैं या नेगेटिव बातें अशुद्ध बातें हैं उनका ही चिंतन करते थे, अर्थात गंध को ही चुगते थे। लेकिन बाबा कहते अभी आप हंस मंडली में आ गए हो, तो जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो अच्छे पुरुषार्थी आत्माएं हैं, अभी हम उन आत्माओं के संग में हैं। तो हमने बगुलों का संग छोड़ा और हंसों का संग पाया। अगले पॉइंट है, भौतिकता को छोड़ा और आध्यात्मिकता को पाया। संसार में हम भौतिकता में फंसे हुए थे, भौतिक साधनों के पीछे हम पड़े हुए थे कि उन साधनों को इकट्ठा करना और उनको अपना सुख का साधन समझ के चलना, लेकिन उन साधनों से स्थायी सुख नहीं मिला। अल्पकाल का टेम्पररी सुख तो मिला, लेकिन बाद में फिर उनसे और ही परेशानियां पैदा होती गई। लेकिन वर्तमान समय हमने आध्यात्मिकता को पाया जिसमें हमको स्थायी सुख मिला। अगले पॉइंट है, भटकती बुद्धि को छोड़ा। भटकती बुद्धि, बाबा ने तीन शब्द कहे थे अभी कुछ दिन पहले के मुरली में, भटकती बुद्धि, चंचल मन और पुराने संस्कार। तो हमने भटकती बुद्धि को छोड़ा और दिव्य बुद्धि को पाया। चंचल मन को छोड़ा और अचल मन को पाया। इस ज्ञान से पहले मन कैसा था? चंचल था। बाबा उस मन को बंदर से उसकी तुलना करते हैं। जैसे बंदर होता है, किसी पेड़ पर बैठा हुआ है, उस पेड़ पर खूब भरपूर फल है, तो उस पेड़ पर किसी एक डाल पर बैठ करके वो एक जगह फल खाके सेटिस्फाई नहीं होगा, क्या करेगा? पूरे पेड़ पर उछल कूद करेगा, कुछ खाया कुछ तोड़ देगा, अर्थात नुकसान करेगा। तो हम सभी का मन भी कैसा था? बंदर की तरह चंचल, कभी कहीं तो कभी कहीं। तो अभी हमें कैसा मन मिला? स्थिर मन, अचल मन। और पुराने संस्कारों को छोड़ा और नए संस्कारों को पाया। पुराने संस्कार दुखदायी संस्कार थे, जिन संस्कारों से हम स्वयं भी परेशान थे और अन्य आत्माएं भी उनसे परेशान थे, उसको हमने त्याग किया और वर्तमान समय हमने नए संस्कारों को पाया, ईश्वरीय संस्कारों को, ब्राह्मण संस्कारों को। अगली पॉइंट है, क्रिमिनल आयु को छोड़ा और सिविल आयु को पाया। बाबा कहते सबसे आपकी सबसे जो खतरनाक जो इंद्रिय है वो कौन से है? आंख है, क्योंकि आंख आपको बहुत धोखा देती है। इस संगम युग पर भगवान ने हमको सिविल आयु दिए, दिव्य चक्षु दिए हुए हैं, जिनसे हमारी उन्नति होती है, जिससे हम दूसरों को भी, जो उनकी आत्मा है, सोल है, उसको देखते हैं, उनकी विशेषताओं को देखते हैं। तो हमने क्रिमिनल आयु को छोड़ा और सिविल आयु को पाया। अगली पॉइंट है, इंद्रिय सुखों को छोड़ा और अतिद्रिय सुख को पाया। संसार में जो सुख हैं वो सब सुख कैसे हैं? इंद्रिय सुख हैं, अल्पकाल के सुख हैं, अभी अभी सुख, अभी अभी दुख। और संगम युग पर जो हमें सुख मिले हुए हैं वो अतिद्रिय सुख हैं, इंद्रियों से परे के सुख। तो हमने इंद्रिय सुखों को छोड़ा और अतिद्रिय सुख को पाया। अगली पॉइंट है, फिक्र को छोड़ा और फखुर को पाया। बाबा कहते हैं पहले के जीवन में आपके 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 जीवन में फिक्र थी, बहुत सारी फिक्र थी, स्वयं के बारे में फिक्र थी, चिंताएं थी, परिवार के बारे में, धंधे के बारे में, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद आपने उस फिक्र को छोड़ दिया और भगवान से फकुर ले लिया। अभी संडे के मुरली में बाबा ने कहा था कि जब भगवान को कोई फिक्र नहीं तो आपको फिक्र क्यों? जब भगवान निश्चिंत है तो आपको कोई फिक्र रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है, बिना कारण के यहां कोई भी बात नहीं हो रही है। इसलिए हमने फिक्र को छोड़ा और फकुर को ले लिया। अगले पॉइंट है, जिस्मानी लव को छोड़ा और रूहानी लव को पाया। जिस्मानी लव, शारीरिक प्यार जो पतन का कारण है, उसको छोड़ा और रूहानी लव पाया। अगले पॉइंट, जिस्मानी श्रृंगार को छोड़ा और रूहानी श्रृंगार पाया। वर्तमान समय मोस्टली आत्माएं जिस्मानी श्रृंगार में फंसे हुए हैं, उस श्रृंगार से अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस श्रृंगार को करते करते हम और ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारा समय, हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, उसमें धन भी बहुत वेस्ट होता है। तो बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन में हमें रूहानी श्रृंगार दिया है, दिव्य गुणों का श्रृंगार दिया है। तो हमने जिस्मानी श्रृंगार को छोड़ा और रूहानी श्रृंगार को पाया। अगली पॉइंट है, जिस्मानी नशे को छोड़ा और रूहानी नशा पाया, नारायणी नशा पाया। जिस्मानी नशे में नुकसान था, चाहे अभिमान का नशा हो, चाहे अहंकार का नशा हो, या फिर कोई सांसारिक जो द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, उनका नशा हो, उन सब में नुकसान था। और ब्राह्मण जीवन में जो बाबा ने जो हमें नशा दिया है, रूहानी नशा, नारायणी नशा, उस नशे में फायदा है, उसमें हमारी उन्नति ही उन्नति है। अगले पॉइंट है, कर्ण रस को छोड़ा और मन रस को पाया। संसार में जो रस हमें प्राप्त हो रहे थे, वो सब कर्ण रस थे या फिर जीव रस थे, अल्पकाल का रस था, टेम्परेरी रस था, उसको हमने छोड़ा और संगम युग पर मन रस को पाया, और मन रस जो है वो स्थायी है। कौड़ियों को छोड़ा, हीरों को पाया। संसार में जो भी हमें प्राप्तियां थी, वो सब कौड़ी के समान थे। ब्रह्मा बाबा के जीवन का अनुभव है कि जब बाबा को ये ज्ञान मिला, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तो बाबा के पास जो हीरे थे, वो बाबा को कौड़ियां पत्थर महसूस होने लगे, कि वो सब पत्थर है और हमको अमूल रत्न अभी प्राप्त हो रहे हैं। तो हम सबने कौड़ियों को छोड़ा, पत्थरों को छोड़ा और हीरों को पाया। तो बाबा कहते हैं, आपके पास अभी जो ज्ञान रत्न है, वो सभी ज्ञान रत्न क्या है, अमूल्य खजाना है, रत्न है, उनको पाया। अगली पॉइंट है, रौब को छोड़ा और रूहानियत को पाया, रोहाब को पाया, रौब और रोहाब। तो जहां रौब होता है, दूसरों पर अपनी धाक जमाने की कोशिश करते हैं, उससे हमारा उससे संबंध बिगड़ते हैं, उससे लोग हमारे से दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं, तो बाबा के तो उसको छोड़ना पड़ेगा। किसी पर रौब नहीं दिखाना है, रोहाब में रहो तो सब स्वतः ही आपकी बात को मानेंगे। अगले पॉइंट है, परतंत्रता के पिंजड़े को छोड़ा और स्वतंत्रता के आकाश को पाया। संसार में सभी आत्माएं परतंत्रता के पिंजड़े में, पराधीनता के पिंजड़े में फंसी हुई है, और बाबा ने हमें एक खुला आकाश दिया है स्वतंत्रता का, तो उसको हमने पाया। अगले पॉइंट है, परधर्म को छोड़ा और स्वधर्म को पाया। अगले पॉइंट, गागर को छोड़ा और सागर को पाया। इसका मतलब, गागर मीन्स क्या? हाँ, तो वो माना हमने क्या गागर को पाया हुआ था, गागर में छोड़ा माना, अल्पकाल की जो छोटी चीजें हैं उनको छोड़ा हमने और अथाह सागर पाया, बेहद की चीजें पाई। अंधकार को छोड़ा, प्रकाश को पाया। अगले पॉइंट है, सबको छोड़ा और शिव को पाया। हम पहले के जीवन में क्या करते थे, इस सबको पकड़े हुए थे शरीर को, और अभी ब्राह्मण जीवन में हमने इस देह को भूलते हैं, तो हम और शिव बाबा को प्राप्त करते हैं, शिव को पाया। कर्म बंधनों को छोड़ा और कर्म संबंध को पाया। अगली पॉइंट है, कनिष्ठ को छोड़ा, उत्तम को पाया। और लास्ट पॉइंट है, अशुद्ध खान पान को छोड़ा और ब्रह्मा भोजन को पाया। दुनिया में संसार की आत्माओं के खान पान कैसा है, अशुद्ध है, तामसिक है, तमो प्रधान है, जो तन को मन को कमजोर करने वाला है, दूषित करने वाला है, उसको छोड़ा हम सभी ने और ब्रह्मा भोजन को पाया। तो ये कुछ बातें थी, इसके अलावा और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में बहुत सारी बातों को हमने और भी छोड़ा हुआ है, और ब्राह्मण जीवन में इसके अलावा बाबा ने और बहुत सारी प्राप्तियां कराई हुई हैं। तो अभी आप बताएंगे, क्योंकि कि इसमें से और कौन कौन सी बातें जो रह गई हैं जिनको आप सभी ने छोड़ा, तो और कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमने छोड़ा? जनरल एसी को छोड़ा, जनरल बोगी को छोड़ा और एसी को पाया, श्याम को छोड़ा और सुंदर को पाया, कक्कपन को छोड़ा और लखपन को पाया, और कांटों को छोड़ा फूलों को पाया, कांटों के सैया को छोड़ा, कांटों के सैया को छोड़ा और फूलों के सेज को पाया, कांटों के तख्त को छोड़ा और भगवान के दिल तख्त को पाया, कानों की कांटों की दुनिया छोड़ा और मधुबन के बगिया को पाया, और कश्ती को छोड़ा किनारे को पाया। कौन सी कश्ती? कश्ती कहाँ थी? भटक रही थी। और छी-छी को छोड़ा गुलगुल को पाया, रोना छोड़ा हंसना पाया। कितनी अच्छी बात है कि पहले सब रो रहे थे, कोई मन से कोई आंखों से, लेकिन अब ब्राह्मण जीवन में सभी मन से भी और तन से भी खुश हैं। टोकरी को छोड़ा और ताज को पाया, और गदाई को छोड़ा राजाई को पाया, गलियों को छोड़ा। अज्ञान काल में हम गलियों में भटक रहे थे, और अभी हम ब्राह्मण जीवन में राम इंटरनेशनल हाईवे उस पर हम चल रहे हैं, जो हमें सीधा मंजिल की ओर ले जाने वाला है, मंजिल पर पहुंचाने वाला है। और बाबा कहते हैं चने मुट्ठी छोड़ा आपने, जो पाइप ऐसा था उसको छोड़ा और खजानों को पाया, रत्नों को पाया। क्वेश्चन मार्क को छोड़ा, जीवन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्यों, क्या, कैसे, कब, किसने, उन सबको छोड़ा और फुल स्टॉप को पाया, अर्थात हमें हर प्रकार की हमें नॉलेज मिली, जो क्यों क्या का जो क्वेश्चन है उन सबका आंसर मिला। और हीनता को छोड़ा दिव्यता को पाया, बताएंगे आप लोग भी। और क्या क्या छोड़ा? रावण को छोड़ा राम को पाया, रावण अर्थात विकारों को छोड़ा, और पुरानी चाल को छोड़ा और फरिश्ते की चाल को पाया, उड़ती कला को पाया, और बेहद की रात को छोड़ा और बेहद का अमृत वेला को पाया, अज्ञान इंद को छोड़ा और ज्ञान प्रकाश को पाया, जागती ज्योत को पाया, चकाचौंध को छोड़ा और चकोर ने चांद को पाया। तो क्या पाया? रिफ्यूज के डिब्बे को छोड़ा और भगवान के दिल तक तो पाया, भगवान के गोद को पाया। और बताइए आप लोग, अंधियारी रात को छोड़ा और ज्ञान दिन को पाया, सोजरे को पाया, खारे चैनल को छोड़ा और क्षीर सागर को पाया, लून पाने को छोड़ा और क्षीरखंड को पाया, कौड़ियों को छोड़ा हीरो को पाया। कितनी अच्छी बात है, कौड़ियों को छोड़ा और हीरो को पाया। और पुजारी पंच छोड़ा और पूज्य बने, डूबने वाले जहाज को छोड़ा और तारने वाले जहाज को पाया, संगम योगी बोट जिसका जो नाविक है वो स्वयं भगवान है उसको पाया। और भेड़ चाल को छोड़ा और फरिश्ते की चाल को पाया, शेर चाल को पाया, शेर जो है ना अकेला चलता है। और अजय नाम मान सम्मान छोड़ा, पाया क्या? सम्मान को पाया, अक्षौहिणी सेना छोड़ी और एक सर्वशक्तिवान को समर्थ को पाया। ग्रस्तीपन को छोड़ा और ट्रस्टीपन को पाया। दिल शिकस्तपन के नमकीन खान पान को छोड़ा और दिल खुश मिठाई को पाया। और क्या कहेंगे, और क्या क्या छोड़ा, क्या क्या पाया, कड़वापन छोड़ा और मीठापन पाया, फर्श को छोड़ा और अर्श को पाया। कितनी अच्छी बात है, फर्श को छोड़ा हमने और अर्श को पाया। फर्श पर हम पहले पड़े हुए थे देवभान में और अभी हम अर्श पर हैं। श्राप को छोड़ा, वरदान को पाया। क्रोध को छोड़ा, शांति को पाया। गुस्से को छोड़ा, खुशी को पाया। भ्रम को छोड़ा और वास्तविकता को पाया। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इसके अलावा और भी कुछ, और भी कई बातें होंगी जिनको हमने इस ब्राह्मण जीवन में छोड़ा और पाया भी। भगवान से हमने बहुत कुछ प्राप्तियां की हुई हैं। तो हमें इन सब बातों को अपनी स्मृति में इमर्ज रखना है, क्योंकि इमर्ज रखेंगे तो हमारा पुरुषार्थ तेज होगा। ये सारी बातें हमने प्रैक्टिकल जीवन में की तो हैं, छोड़ा भी है और पाया भी है, लेकिन हमें, हम वो उन बातों को इमर्ज नहीं रखते हैं, उनको भूले हुए, इसलिए हमारा पुरुषार्थ भी ठंडा रहता है। तो हमें अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो इन सब बातों को स्मृति में इमर्ज रखना है। तो हमारा पुरुषार्थ फास्ट होगा और हम अपनी मंजिल की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।
बाबा तूने बना के अपना हमको महान बना दिया, पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया।
Oh, my God.